दिन भर 28 अगस्त दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा।
इन चीजों को देखते हुए उसको मतलब मैक्सिमम सजा की जानी चाहिए थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए था इसमें। और बाकी 10 साल सजा का जो फैसला आया है उसका भी स्वागत है।
भारत और चीन के बीच डोकलाम पर गतिरोध समाप्त। चर्चा होगी मध्य प्रदेश के एक हवलदार की जिसने अपनी जान पर खेलकर 400 बच्चों की जान बचाई।
मैंने पहले तो स्कूल को खाली कराया आनंद फानंद में और बच्चों को जितना दूर हो सके ले जाने की कोशिश की क्योंकि वो है रहवासी क्षेत्र।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। सीबीआई के एक विशेष कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार मामले में सजा सुना दी है। कोर्ट ने उन्हें बीती 25 अगस्त को दो महिलाओं से रेप के मामले में दोषी ठहराया था। गुरमीत के वकील एसके गर्ग के मुताबिक उन्हें दोनों मामलों में 10-10 साल की सजा दी गई है। सजा के ऐलान के लिए हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल के अंदर विशेष अदालत लगाई गई। इसके पहले गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा में 38 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे। इसे देखते हुए आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक आज अब तक किसी बड़ी घटना की जानकारी नहीं मिली है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन डोकलाम से सेना हटाने को तैयार हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक डोकलाम को लेकर भारत और चीन ने कूटनीतिक बातचीत जारी रखी है। इस आधार पर सीमा पर से सेना हटाने का फैसला किया गया है और इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं चीन का कहना है कि भारत ने विवादित क्षेत्र से अपनी सेना हटा ली है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर खुशी भी जाहिर की है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ख्वा चुनयिंग ने कहा कि चीन अपनी संप्रभुता की हिफाजत करता रहेगा। उन्होंने कहा, भारतीय सेना और उनके साजो सामान सीमा के दूसरी तरफ चले गए हैं। मौके पर मौजूद चीनी सैनिकों ने इसकी पुष्टि की है। चीन ऐतिहासिक सीमा के नियमों के मुताबिक अपनी संप्रभुता की हिफाजत के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता रहेगा। बदले हुए हालात में चीन जमीनी स्थिति के मुताबिक वहां सैनिकों की तैनाती करेगा। ये थे चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक से मिली खबर के मुताबिक बगदाद में हुए एक कार बम धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 25 अन्य लोग घायल हुए हैं। ये धमाका जामिला जिले के एक भीड़ भरे बाजार में हुआ। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। अमेरिका में आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि टेक्सास में बाढ़ की वजह से करीब 30,000 लोगों के लिए आपातकालीन शरण स्थल की ज़रूरत होगी। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ की ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये स्थिति चक्रवात हार्वी के असर से हुई भारी बारिश के कारण बनी है। अधिकारियों ने सभी लोगों से मदद में सहयोग करने को कहा है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है और मदद के लिए 30 विमान लगाए गए हैं। कोस्ट गार्ड के कमांडर एडमिरल पॉल ने बताया, अच्छी खबर यह है कि हजारों जिंदगियां बचा ली गई हैं और फिलहाल हमारा यही उद्देश्य है। हम फिलहाल जो प्रयास कर रहे हैं उसे बरकरार रखना चाहते हैं। ये थे अमरीकी कोस्ट गार्ड के अधिकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान पर सीरिया और लेबनन से इसराइल पर मिसाइल दागने के लिए निर्माण का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेश का यरूशलम में स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल को ख़त्म करने के अपने घोषित लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ है। गुटरेश ने कहा कि इसराइल को अपनी सुरक्षा तय करने का पूरा अधिकार है। पोप फ्रांसिस नवंबर में म्यांमार का दौरा करेंगे। इस ऐलान के एक दिन पहले ही पोप ने रोम के अपने साप्ताहिक संबोधन में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की तकलीफों का जिक्र किया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। दो साध्वियों से रेप केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अदालत ने 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रोहतक की सुनारिया जेल में लगी अदालत में जस्टिस जगदीप सिंह ने सजा का ऐलान किया। राम रहीम को दोनों सजा अलग अलग काटनी होगी, यानी उन्हें कुल 20 साल की सजा हुई है। कोर्ट ने इसके अलावा दोनों केस में अलग अलग 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोनों पीड़ितों को 14-14 लाख रुपए दिए जाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने सिरसा गए बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली से फैसले का विवरण मांगा।
रेहान साहब, ये हुआ कि 10 साल की सजा सुनाई गई गुरमीत बाबा राम रहीम को बलात्कार के और कुछ दूसरे मामलों में। जगदीप सिंह जो सीबीआई जज थे, उन्होंने फैसला सुनाया, उनको वहां से हेलीकॉप्टर से लाया गया था। और दो दिनों पहले हाई कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया था कि जो रोहतक जेल है उसी को जो है सीबीआई की एक अस्थायी अदालत में तब्दील कर दिया जाए। जज के साथ उनके दूसरे जो लोग थे सहयोगी, वो भी मौजूद थे। जैसे ही सजा सुनाई गई, जो बाबा राम रहीम है वो रोने लगे। उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया और साथ साथ उनको जेल की वर्दी दी गई, और फिर जो है हो सकता है कि उनको वो जेल ले जाया गया।
ये बताइए, किस तरह का रिएक्शन है, उनके समर्थकों ने इसको किस तरह से लिया है इस सजा को?
उनके समर्थकों के बारे में कहना इस वक्त बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो डेरा का जो मुख्यालय है सिरसा में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, उसको खाली करवाया जा रहा है। करीब यहां के जो डिप्टी कमिश्नर हैं प्रभजोत सिंह, उन्होंने मुझे कल रात ये बताया था कि तब तक जो है 3,500 से 4,000 लोगों को जो है वो बाहर भेजा जा चुका था। बसों से बाहर ले जाना अभी भी डेरा समर्थकों का जारी है। उनके अंदर एक निराशा है। कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री का कहना है कि ये प्रीमिसेस खाली कर दीजिए। कल रात में भी हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था। लेकिन उसमें जाने वाले लोगों में एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि डेरा के अंदर किसी तरह का काम कर रहे थे। जैसे एक फ्रेंच टीचर से हमारी मुलाकात हुई, एक बायोलॉजी टीचर से मुलाकात हुई, और बाकी इस तरह के अन्य लोग।
आपकी मुलाकात अंशुल छत्रपति से भी हुई है, उनका क्या कहना है?
अंशुल छत्रपति जो है, उनका ये कहना था कि उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि ये फैसला जो है उसका स्वागत है। हालांकि उनका कहना ये था कि जितने बड़े जुर्म उन्होंने किए बाबा राम रहीम ने, उनको इससे भी ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन न्याय की एक व्यवस्था है, इसलिए हम जो है इसका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई बार इस लंबी लड़ाई में उनके पिता की हत्या हो गई थी, जैसा कि लोग जानते हैं, और उनका इल्ज़ाम था कि बाबा राम रहीम ने ये हत्या करवाई है, चूंकि उन्होंने उनके खिलाफ अपने अखबार में कई लेख छापे थे। उनका कहना था कि कई बार हताशा हुई, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी मदद करते रहे इस मामले में। हालांकि ये मदद आम लोगों की तरफ से थी, ये मदद जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं हुई, और हर पॉलिटिकल पार्टी ने ये कोशिश की कि किसी तरह से जो है इस संत को, इस गुरु को बचाया जाए। और उनका कहना था कि भारतीय जो एक पूरी संस्कृति है उसमें किसी भी संत और किसी भी गुरु के खिलाफ ना बोलने की बात कही जाती है। सांसद रेहान साहब, यहाँ ये भी बता देना चाहूंगा कि 16 सितंबर से जो है कार्रवाई शुरू होगी पंचकुला सीबीआई अदालत में। जो अंशुल छत्रपति हैं, उनके पिताजी जो छत्रपति थे जिनकी हत्या हो गई थी, उस मामले में सुनवाई शुरू होगी।
अच्छा, ये बताइए, अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? बाबा के कैंप से क्या कहा जा रहा है, आगे वो क्या करेंगे?
बाबा के कैंप से अभी तक जो प्रतिक्रिया आई है वो तो यही है कि अब वो आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ऊंची की अदालतों में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन ये मामला इस तरह का है और 10 साल की सजा हुई है, इसलिए शायद बेल मिलना उतना आसान नहीं होगा, और हो सकता है कि अब आगे की अदालतों में सुनवाई के बाद अदालत
और उत्तराधिकार का जो मामला है, बाबा के बाद लीडरशिप कौन संभालेगा?
ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है रेहान साहब, क्योंकि इसमें कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। एक अफवाह तो ये है कि उनकी जो दो बहुत निकटतम सहयोगी विपासना इंसा और हनीप्रीत, जिन्होंने उनके साथ कई फिल्मों में काम भी किया था, जो मैसेंजर ऑफ गॉड नाम की 1 और 2 फिल्म आई थी, उनका नाम आ रहा है कि हनीप्रीत जो है उनसे सबसे करीबी हैं, और वो उस दिन जब उनको दोषी ठहराया गया था उस वक्त वो पंचकुला अदालत में उनके साथ भी गई थी, तो उनका नाम आ रहा था। लेकिन साथ साथ एक ट्रस्ट डीड भी जो है वो कुछ लोग जो है वो लेकर घूम रहे हैं, वो कितना सच है ये कहना मुश्किल है। उसके मुताबिक जो है वो जो ट्रस्टीज हैं वो 2/3 मेजोरिटी से बैठेंगे, और जो लीनियज है, मतलब जो बाबा के परिवार में से किसी को चुन के ही जो है उसका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा।
ये थे हरियाणा गए बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। इन खबरों की पुष्टि अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है कि गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के दो अलग अलग मामलों में 10-10 साल की अलग अलग सजाएं दी गई हैं, यानी उन्हें 20 साल जेल में बिताने होंगे। इस फैसले का सिरसा के एक पत्रकार के पुत्र अंशुल छत्रपति ने स्वागत किया है। उनके पिता रामचंद्र छत्रपति की बलात्कार के इन मामलों को उजागर करने के लिए कथित रूप से हत्या कर दी गई थी। रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने फैसल मोहम्मद अली से बात करते हुए कहा,
मेरा ये मानना है कि जो सजा मुकर्रर की गई है आज, मतलब जिस तरीके का हेनियस क्राइम है, उस लिहाज से ये कोई एक लड़की नहीं थी जिसके साथ बाबा ने बलात्कार किया। बहुत सी ऐसी लड़कियां, जैसा कि चिट्ठी में भी आरोप लगाया गया था कि बहुत सी ऐसी साध्वियां हैं डेरा के अंदर जिनका यौन शोषण किया जाता रहा, और जैसा कि CBI की इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आया कि बहुत सारी लड़कियों ने एडमिट किया कि उनके साथ रेप हुआ, लेकिन वो किसी न किसी डर की वजह से और किसी न किसी फैमिली रीजंस की वजह से वो सामने नहीं आना चाहती। इसलिए दो लड़कियों के साथ जो उन्होंने बयान दिया कि हमारे साथ ऐसा किया गया, इस सब को देखते हुए और इतने हीनियस क्राइम को देखते हुए कि उनकी जो धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर उनके साथ जो किया जाता रहा, जिनको उन्होंने भगवान माना, उस भगवान ने उनकी इज्जत को तार तार किया, इन चीजों को देखते हुए इसको मतलब मैक्सिमम सजा की जानी चाहिए थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए था इसमें। और बाकी 10 साल सजा का जो फैसला आया है उसका भी स्वागत है, जिस तरीके से मतलब कानून अपना काम कर रहा है, इतने बड़े ढोंगी को जिस तरीके से कानून ने नकेल डाली है, चलिए शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे जो दो मामले आने वाले हैं फैसले पर, उसमें भी इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
ये थे अंशुल छत्रपति। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरमीत सिंह राम रहीम पर अदालत के इस फैसले का ना तो स्वागत किया है और ना ही विरोध। चंडीगढ़ से रविंदर सिंह रोबिन की रिपोर्ट।
बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद CBI की विशेष अदालत ने सिरसा के डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को 10 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद पंजाब और हरियाणा के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक की और बाद में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यपालों से मिले और उन्हें सुरक्षा प्रबंधों से अवगत कराया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनोर से मुलाकात के बाद BBC से बात करते हुए कहा,
माई जॉब इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर हैज बीन मेंटेन्ड। दिस इज द कोर्ट मैटर फॉर द कोर्ट हैज डिसाइडेड एंड व्हाटएवर द कोर्ट हैज डिसाइडेड वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट।
कैप्टन ने ये भी कहा है कि पंजाब में जहां जहां कर्फ्यू लगे हैं, जिला डिप्टी कमिश्नर को कह दिया गया है कि स्थिति के हिसाब से वे कर्फ्यू हटा सकते हैं। कल पंजाब में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। इसी बीच फैसले के बाद हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। पंचकुला में कई जगह पर आज फ्लैग मार्च निकाले गए हैं। हरियाणा को जाने वाले अभी भी सभी मार्गों पर सख्ती कर दी गई है और सभी लोगों को अपना परिचय पत्र दिखाने के बाद ही हरियाणा जाने या हरियाणा से बाहर आने के लिए दिखाना पड़ रहा है। डिप्टी कमिश्नर पंचकुला ने जिले में 25 अगस्त को हुई हिंसा के मद्देनजर सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान के लिए लोगों से दावे मांगे हैं। यह आवेदन उपमंडल अधिकारियों के कार्यालयों में जमा होंगे और यह दावे 15 दिनों के अंदर अंदर जमा करवाए जा सकते हैं। दोनों राज्यों में हुए हिंसक वारदात के बाद स्थिति को सामान्य बनाने के लिए दोनों मुख्यमंत्री अब लगातार अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और लोगों में विश्वास बहाली की प्रयत्न कर रहे हैं। चंडीगढ़ से रविंदर सिंह रॉबिन, BBC हिंदी के लिए।
मैंने BBC पंजाबी सेवा के संपादक अतुल सांगर से पूछा कि अदालत के इस आदेश के बाद क्या ये माना जाए कि डेरा की राजनीति अब समाप्ति की ओर है।
देखिए रेहान, डेरा बहुत सारे डेरे हैं पंजाब, हरियाणा में, हिमाचल में और भी जगह पे हैं, और ये एक फैसला जो है इससे डेरों डेरे ख़त्म हो जाएंगे ऐसा मानना गलत होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इतने सारे डेरे चल रहे हैं और कई बहुत बड़े बड़े डेरे हैं, और इसमें ही डेरा सच्चा सौदा में ही इनकी जो बेतहाशा प्रॉपर्टी है, इतने बड़े बड़े इतने, और वो अपने आप क्लेम करते रहे हैं कि उनके 6 करोड़ समर्थक हैं, 6 करोड़ ना भी हों, इससे कम भी हों, तब भी लाखों में इनके समर्थक हैं। तो ये एकदम से ख़त्म होने वाली बात नहीं है। इसके बाद कौन गद्दी संभालता है, ये गुरमीत राम रहीम सिंह किस तरह का अरेंजमेंट करते हैं,
लेकिन जिस तरह से ये पर्सनालिटी कल्ट है, यहाँ उत्तराधिकार के कोई नियम तो बिल्कुल साफ साफ तो है नहीं।
इसीलिए, क्योंकि उत्तराधिकार के नियम साफ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो भी करिश्माई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आएगा तो वो गद्दी पे बैठ सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही रहा है। हमें यह समझना होगा कि डेरे जो हैं इसलिए पनपते हैं क्योंकि यहाँ पे दलित और दबे कुचले और वर्गों के लोग और कुछ सवर्ण भी आते हैं, और उनको एक भाईचारे के तहत उनकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं जो कि वैसे समाज पूरी नहीं कर पाता है। और इसमें इनके शादी ब्याह हैं, किसी का इलाज है, किसी के पढ़ाई के खर्चे हैं, किसी की और तरह की ज़रूरतें हैं, तो ये सब ज़रूरतें जो है जब डेरा और उसका भाईचारा पूरा करता है तो ये ज़रूरतें तो ख़त्म होने वाली नहीं है।
और ये जो पॉलिटिकल पैट्रनेज देने की बात है, जैसा कि पिछले दिनों देखने में आया, अब आपको लगता है लोग इससे गुरेज करेंगे?
बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि डेरों के पास बहुत उनके भाईचारे के कारण, उनके अपने काम जो वो करते हैं बीच में, बहुत समाज कल्याण के काफ़ी काम होते हैं, और इससे इसको कोई नकार नहीं सकता। तो ये समाज कल्याण के काम जो हैं, जो भाईचारा है उनका, वो तो बना रहेगा, और क्योंकि ये बना रहेगा इसलिए बहुत सारे लोग इकट्ठे जुड़े रहेंगे, और इनकी ज़रूरत हमेशा राजनीतिक लोगों को पड़ती रहेगी।
ये थे बीबीसी पंजाबी सेवा के संपादक अतुल सांगर।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। लगभग 3 महीनों से चल रहे डोकलाम विवाद को लेकर एक बार फिर भारत और चीन का अलग अलग बयान सामने आया है। भारत की तरफ से जहां बयान जारी कर कहा गया है कि डोकलाम से दोनों देश सेनाएं हटाने को तैयार हैं, वहीं चीन ने इस दावे को खारिज कर दिया है। चीन ने कहा है कि सीमा से सिर्फ भारतीय सेना हटी है। मैंने इंडियन एक्सप्रेस के सह संपादक सुशांत सिंह से संपर्क कर ताज़ा घटनाक्रम पर उनकी राय मांगी।
इसको मैं इस तरह से देखते हैं रेहान के भाई, अभी तक ज्यादा डिटेल्स इसके नहीं आए हैं, पर भारत ये चाहता था कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और उस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए ये डिसएंगेजमेंट हुआ है, जो कि एक अच्छी बात।
आपकी नजर में ये एक तरह का क्लाइम डाउन है भारत की पुरानी पोजीशन से?
देखिए, कहने समझने वाली बात ये है कि भारत ये चाहता था कि चीन उस इलाके में सड़क ना बनाए। भारत का उसके अलावा कोई और ऑब्जेक्शन नहीं था कि चीन की पेट्रोल वहां पर ना आए या चीन कुछ और कार्रवाई ना करे। तो अगर सड़क चीन नहीं बना पाता है अब, तो शायद भारत के लिए क्लाइम डाउन तो कतई नहीं है, एक तरह से विक्ट्री है, जीत ही है अगर चीन वो सड़क नहीं बनाता है। पर इस बात पर अभी क्लैरिटी नहीं है, कोई सफाई नहीं है कि चीन वो सड़क बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जब तक ये बात साफ नहीं होती है, इस पर कुछ और कहना मुश्किल होगा।
ये जो पूरा डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ रहा है, आपको लगता है चीन का अपर हैंड रहा है इसमें?
देखिए, अब ऐसा नजर आता है कि अगर भारतीय सेना पहले वहां से हटी है, और उन दोनों स्टेटमेंट्स में से जो भारत की ओर से जारी हुआ और जो चीन की ओर से जारी हुआ, उसमें से इस बारे में कोई बात नहीं है सड़क के बारे में या यथास्थिति को बरकरार करने के बारे में, तो थोड़ा सा शुबा तो जरूर है। पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद चीन इस बात के लिए राजी हो गया है कि वो सड़क नहीं बनाएगा। जब तक कि इस पर थोड़ी सी और सफाई नहीं आएगी, थोड़ी सी और क्लैरिटी नहीं आएगी, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होगा कि किसका अपर हैंड है किसका नहीं है। समझने वाली बात ये है कि अगर चीन वो सड़क नहीं बनाता है तो भारत का अपर हैंड है, और अगर वो चीन सड़क बना लेता है तो किसी भी तरह से भारत का वो अपर हैंड नहीं होगा।
आपको लगता है कि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए, इसकी वजह से ये डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग हुई है सॉल्व करने के लिए?
जी बिल्कुल, उससे आने वाली ब्रिक्स समिट का इससे बिल्कुल असर पड़ा का बिल्कुल इस पे वो रही है, शेडो रही है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री के लिए भी उस वक्त जाना
जबकि दोनों सेनाएं आमने सामने एक दूसरे के ढाई महीने से खड़े हुई हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता और बड़ी ही मतलब ऑकवर्ड स्थिति हो जाती तो और चीन के लिए भी ऑकवर्ड स्थिति हो जाती है। अगर मान लीजिए भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो नहीं आ रहे हैं तो वो जरूर एक कारण रहा है जिसकी वजह से ये समस्या अभी सॉल्व हुई है।
ये थे इंडियन एक्सप्रेस अखबार के सह संपादक सुशांत सिंह। उधर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज में सीनियर फेलो अतुल भारद्वाज का कहना है कि डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच पिछले 3 महीनों से जो तनाव बना हुआ था वो अब निश्चित रूप से कम होगा और एक नया दौर शुरू होगा। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, इससे पहले सेना हटाने का ये कदम अहम है। सम्मेलन के लिए ये जरूरी था कि ब्रिक्स के 2 महत्वपूर्ण सदस्य देश तनाव मुक्त माहौल में एक साथ बैठ पाएं और सहजता के साथ बातचीत कर सकें। चीन ने यह अल्टीमेटम दिया था कि जब तक भारत डोकलाम से अपनी सेना नहीं हटाता है तब तक माहौल अच्छे नहीं समझे जाएंगे।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब बात मध्य प्रदेश के सागर की, जहां पर पुलिस के एक हवलदार ने जान पर खेलकर करीब 400 बच्चों की जान बचाई है। उनकी इस बहादुरी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें 50,000 रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया है। शूरे न्यासी की रिपोर्ट।
सागर जिले में पदस्थ हवलदार अभिषेक पटेल पिछले शुक्रवार को डायल 100 में ड्यूटी कर रहे थे। उसी वक्त उनके पास सूचना आई कि चितौरा गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल के पास बच्चों ने एक बम पड़ा हुआ देखा है। दोपहर 1 बज रहे थे। यह सूचना मिलते ही अभिषेक पटेल अपने 2 साथियों के साथ स्कूल की तरफ चल पड़े। वो वहां से 8 किलोमीटर दूर थे लेकिन उसके बावजूद डायल 100 10 मिनट में स्कूल के करीब पहुंच गई। अभिषेक पटेल ने स्कूल पहुंचने के फौरन बाद पूरे स्कूल को खाली कराया। उस वक्त स्कूल में तकरीबन 400 बच्चे मौजूद थे और करीब ही रहवासी इलाका भी है। इसके बाद अभिषेक ने बम को उठाकर दौड़ लगा दी। लगभग 10 किलो वजनी इस बम को लेकर वो 1 किलोमीटर तक दौड़े और फिर उन्होंने उसे मैदान में फेंक दिया। अभिषेक पटेल ने बताया,
ग्राम चितौरा में स्कूल के पीछे किसी ने बम की सूचना दी है, मतलब वो आर्मी का बम है ये बताया था उन्होंने। तो मौके पर सर मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा वहां पर। वहां पर देखा कि बच्चे स्कूल में थे और वो बम को लोग वहां घेर के खड़े हुए थे, क्योंकि वहां पर मतलब इसी प्रकार का एक बम मिला था जिसमें बहुत भयानक मतलब विस्फोट हुआ था। इसको देखते हुए मैंने पहले तो स्कूल को खाली कराया आनंद फानंद में और बच्चों को जितना दूर हो सके ले जाने की कोशिश की, क्योंकि वो है रहवासी क्षेत्र। अब रहवासी क्षेत्र होने से मुझे ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बम फट जाए या कोई दुर्घटना हो जाए। मौके से उठाया और जितना दूर हो सके मतलब गांव से बच्चों से दूर ले गया दौड़ के।
आज सोमवार है, आज के दिन आप सुनते हैं अपने पत्रों के उत्तर और आपके पत्रों के साथ हैं सरोज सिंह और राजेश प्रियदर्शी।
आपकी राय, नमस्कार। आपकी चिट्ठियों के साथ आज मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ हैं
मैं सरोज सिंह।
तो आइए शुरू करते हैं चिट्ठियों का सिलसिला।
सबसे पहली चिट्ठी उमा शंकर सिंह ने लिखी है बस्ती उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने लिखा है, मेरी उम्र लगभग 80 वर्ष है और मैं स्वर्गीय श्री ओंकारनाथ श्रीवास्तव जी के समय से ही बीबीसी सुन रहा हूं, लेकिन दिनों दिन बीबीसी के संवाददाताओं की मानसिकता का झुकाव अधिकतर एक पक्षीय रहता है। तो ये आलोचना है और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी की विवेचना हम बहुत बार प्रसारित कर चुके हैं, ऐसा इनका कहना है।
एक तो ये कि हमारे बुजुर्ग और पुराने श्रोता हैं और बहुत समय से सुन रहे हैं। ये मेरा भी सौभाग्य रहा है कि ओंकार जी के साथ कुछ साल लंदन में मैंने भी काम किया है, और जहाँ तक आपका ये कहना है कि हमारा झुकाव एक तरफा है, उसके बारे में मेरी यही राय होगी और आपसे यही गुजारिश होगी कि आप अगर हमारे कार्यक्रमों को इस तरह से देखें और समझें कि हम आपको वो बताना चाहते हैं जो सरकारें और जो मंत्री और विधायक और नेता नहीं बताते या नहीं बताना चाहते। ये सरकार अगर बहुत सारे फैसले लगातार कर रही है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है आपके प्रतिनिधि के तौर पर कि हम आपको बताएं कि वो जो बता रहे हैं उसके अलावा उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। वो कई बार आलोचना की तरह लगती हैं, लेकिन अगर उसमें कोई तथ्यों की गड़बड़ी हो, उसमें आपको लगता है कि हम कोई हेर फेर कर रहे हैं, हम कोई चीज़ छिपा रहे हैं, कोई चीज़ बढ़ा के बता रहे हैं, तो ज़रूर आप शिकायत करें। लेकिन ये उम्मीद करना कि जिस तरह से सरकार अपनी योजनाओं की तारीफ कर रही है वैसे ही आपको सूचना देने वाले प्रसारक भी उसकी तारीफ करने लगें, इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे।
अगला खत है शत्रुघ्न सिंह चौहान का, नवाबगंज उन्नाव से वो लिखते हैं। इन्होंने हमारी तारीफ भी की है और हमसे एक निवेदन भी किया है। उनका कहना है कि विवेचना के संदर्भ में रेहान फजल का कोई सानी नहीं है, बहुत ही बेजोड़ बोलते भी हैं, उनका अंदाजे बयां गालिब की तरह है, लेकिन एक गुजारिश की है उन्होंने कि अगर विवेचना आतंकवाद पर वो कर सकें।
बिल्कुल, लेकिन आतंकवाद एक ऐसा विषय है जिस पर विवेचना करने का मतलब है कि आप गौर से अगर रेहान फजल की विवेचना सुने तो उसका एक बहुत फोकस्ड एक विषय होता है जिसमें वो एक खास घटना के बारे में बात करते हैं। तो वो आतंकवाद के बारे में विवेचना करना तो जैसे एक महाग्रंथ लिखने जैसी चीज़ है 11-12 मिनट के कार्यक्रम में। ये ज़रूर हो सकता है कि आतंकवाद से जुड़ी जो बड़ी घटनाएं हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं या जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए, वो उन पर कई ऐसे कार्यक्रम बन सकते हैं विवेचना के जो रेहान साहब ज़रूर बना सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपका इरादा भी वही है कि आप चाहते हैं कि आतंकवाद से जुड़े जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं और जो घटनाएं हैं उन पर आप विवेचना सुने, तो हम ये बात उन तक ज़रूर पहुंचा देंगे।
अगला ईमेल है एहसान असगर का, मलकापुर बुल्डाना महाराष्ट्र से। वो लिखते हैं कि एक बार फिर बीबीसी हिंदी अपने आप में साबित किया जा रहा है कि जहां दुनिया के न्यूज़ चैनल बाबा गुरमीत राम रहीम की नई नई और असभ्य उपाधि दे के सम्मानित कर रहे हैं, वहीं बीबीसी हमेशा की तरह रेस्पेक्टफुल्ली बात करती नज़र आई। शालू जी की तारीफ की है और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने हिम्मत जुटाई और डेरे के अंदर तक गई, उन्हें वो बहुत ही अच्छा लगा, आज ही सुबह वो प्रसारित भी किया गया था।
ये हमारी नीति है, संपादकीय नीति, और इसके लिए हमें बहुत आलोचना भी झेलनी पड़ती है। आप अभी तारीफ कर रहे हैं लेकिन ज़्यादातर वक्त ये होता है कि लोग हमसे शिकायत करते हैं और कहते हैं कि फलां को आप सम्मान के साथ क्यों उसका नाम ले रहे हैं, उसको आपको असम्मान के साथ उसका नाम लेना चाहिए। लेकिन हमारी जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो ये कहती है कि हमको किसी को न तो हम अतिरिक्त सम्मान देते हैं, न तो हम किसी के नाम के आगे श्री लगाते हैं, न अपनी तरफ से किसी के नाम के आगे जी लगाते हैं, और न ही किसी के नाम को हम जानबूझकर अपमानसूचक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारी नीति है और इसके लिए कभी हमारी तारीफ होती है और कभी हमारी आलोचना होती है, आज तारीफ हो रही है।
अगला खत है गुड्डू गौतम मोतिहारी बिहार से, लिखते हैं, एक तारीफ भी है और एक आलोचना भी। आप पहले क्या सुनना पसंद करेंगे?
आलोचना बता दीजिए, पहले क्या कह रहे हैं।
दिन शुक्रवार कार्यक्रम नमस्कार भारत, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे अमरीश द्विवेदी जी, उन्होंने मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरनगर कह दिया था, इसकी उन्होंने आलोचना की है।
ये तो एक गलती है और ये एक मानवीय भूल है। अमरीश आमतौर पर काफ़ी सतर्क होते हैं, उनको हम ये बात ज़रूर बताएंगे और ये उनसे गलती हुई है और इसके लिए हम बिना किसी किंतु परंतु के आपसे क्षमा चाहते हैं।
अगली तारीफ है बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों से, जो साहसिक रिपोर्टिंग रवि प्रकाश ने की है उसकी उन्होंने तारीफ की है। साथ ही जेडीयू नेता केसी त्यागी से जो बातचीत की हमने वो उन्हें बहुत अच्छी लगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तारीफ़ों के लिए और इन संदेशों के लिए, और मेरे ख्याल से घड़ी अब इशारा कर रही है कि हमें आज अब पत्रों का सिलसिला यहीं रोकना पड़ेगा। आपने हमें चिट्ठियां लिखी, इसी तरह हमें पत्र लिखते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठियां आपने इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। फिलहाल अगर आप हमें पत्र लिखना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता भी वही है hindi.letters@bbc.co.uk। तो अनुमति दीजिए, नमस्कार।
और चलते चलते एक नज़र मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। सीबीआई के एक विशेष कोर्ट ने दो महिलाओं से बलात्कार के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 10-10 साल की सजा सुनाई है, यानी उन्हें जेल में कुल 20 साल बिताने होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन डोकलाम से सेना हटाने को तैयार हो गए हैं। वहीं चीन का कहना है कि भारत ने विवादित क्षेत्र से अपनी सेना हटा ली है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता क्वा चुनिंग ने कहा है कि चीन अपनी संप्रभुता की हिफाजत करता रहेगा। इराक से मिली खबर के मुताबिक बगदाद में हुए कार बम धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे शाकिर आलम, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।